अब ये कुरान आया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने कलाम दिया। अब सवाल पैदा होता है कि हम क्यों सुने? ह्यूमन नेचर का लिहाज करते हुए अब अगली आयतों में देखेंगे कि जब किसी बात को किसी बड़े शख्स की तरफ से सुनाया जाता है ना, तो लोग तवज्जो से सुनते हैं। बस अगर आपकी मासी है, आपके पास आती है, कहती बाजी आज मैंने एक ज़रूरी बात आपसे करनी है, तो क्या आप अपना काम छोड़कर उसकी बात सुनने लग जाएंगी? आप कहेंगे अच्छा फारिग होंगी तो आना, अभी मैं काम कर रही हूँ। इतने में आपको फ़ोन आ जाए आपके बॉस का या किसी भी बड़े शख्स का, और वो कह दे जी क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? जी ज़रूर, श्योर, कोई बात नहीं, काम नहीं, आप काम ख़त्म कर लें जो कर रही थी। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, वो आप मुझे बताएं। इसलिए अब अल्लाह आगे इस कलाम को भेजने वाली ज़ात से हमारा तारुफ़ करा रहा है, ये तुम खुशकिस्मत हो कि तुम कितनी प्यारी किताब पढ़ रहे हो, जो कि आयत 4 तंजीलम में मन खलकल अर्द वस्समावात अल-उला, इसकी तंजील उस हस्ती की तरफ से जिसने पैदा किया ज़मीनों को भी और बुलंद आसमानों को भी। छोटी हस्ती नहीं है। तो आप कहते हैं लैंड लॉर्ड का ऑर्डर आया, अल्लाह कहता है दुनिया का लॉर्ड हूँ, आसमानों का लॉर्ड हूँ। और ये जो लफ्ज़ अर्थ देखें वाहिद लगता है, लेकिन ये जमा में भी आता है, और समावात समा उनसे, उला बुलंद, उलूफ से इसम तफजील है, इसी की जमा मुअन्नस फिर उलिया है, तो बुलंद आसमानों की तरफ इशारा है। क्या आसमानों से ये मैसेज आया तुम्हारे पास? कौन? अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, यानी रहमान जो अर्श पर करार पकड़ता है। आप सोचें एक कॉल आपको आ जाए अपने घर के किसी फर्द के फ़ोन से, और बीच में आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस कॉल मिल जाए, कौन सी लेते हैं? आप कहते हैं दूर से कॉल आई है, तो कुरान लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, आसमानों से उतरा हमारे लिए। और लफ्ज़ है ना तंजीला, एहतमाम से उतारना, थोड़ा थोड़ा करके उतारना। और अल उला आसमान की सिफत के तौर पर आया, उलूफ से आइन लाम वाओ। आली लिखेंगे तो ये फाइल है, अल आला इसम तफदील है, उसी से फिर मुअन्नस है उलिया। बहरहाल आप देखें कि अरबी में जमा की भी जमा होती है, इशारा है आसमान की अजमत की तरफ, अर्श पर इस्तवा है। अब अल्लाह ताला अर्श पे कैसे है? इमाम मालिक से किसी ने पूछा, गुस्से में आ गए, कहने लगे, बल्कि आप भी लिख लें, ये बहुत ही मारूफ कोटेशन है उलमा के बीच में। इमाम मालिक ने कहा अल इस्तवा मालूम, इस्तवा तो वही लफ्ज़ है जो आपके सामने कुरान पाक में भी है। कहते हैं कि इस्तवा तो हमें मालूम है, यानी कुरान में आ गया कि अल अर्श इस्तवा, वल कैफ़ुहु मजहूल, लेकिन कैसे बैठा है, कैफियत क्या है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, कुर्सी पे है, स्टूल पे, कैसे हमें नहीं पता, मजहूल बिन जाहिल है हम इससे। अल्लाह है अर्श पर किस फॉर्म में बैठा है इसको हम नहीं जानते। जैसे दुनियावी बादशाह कभी तख्तों पे बैठते थे, आज के दौर में कुर्सियों पे बैठते होंगे, का कैफियत नहीं मालूम। बस सवाल अनहु बिदा, और इसके बारे में सवाल करना बिदत है, डांटा उसको कि तुझे इससे क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह अर्श पे कैसे है, और कहा अगर आज के बाद ये बात दोबारा कही तो तुम्हें भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं दूंगा। बड़ा सख्त मिजाज होता था उलमा का, क्योंकि उनको पता था हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है, तो लोगों को ऐसे ही नहीं कहते थे जो करना कर लो, आ जाओ बैठ जाओ। ये तो आज के दौर के तोहफे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि हम दबे हुए लोग हैं। जिस दिन बंदे को यकीन होता है, आप देखिए कि कभी आप किसी भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएं तो कभी कोई वहाँ सेलफोन नहीं लेके जाएगा अगर वो बंद कर दें, लेकिन आज हम दीन के नाम पे मस्जिदों में हमारे म्यूज़िक चल रहे होते हैं। उस वक्त तकलीफ दे कैफियत होती है जब मस्जिद में किसी का फ़ोन आ जाए, ऊपर इमाम साहब किरत कर रहे हैं, नीचे म्यूज़िक चल रहा है, और इतनी तकलीफ़ है। किसी ने कहा कि एक ऐसा सिंगर है वो सिर्फ एक या दो मिनट का क्लिप देता है, लेकिन आता वो हमेशा नमाज के दौरान है, और वो सिंगर कौन है? वो आपके टेलीफोन का वो म्यूजिक जो अजान के साथ चलता है। तो लिहाजा जितनी दीन की इज्जत होगी ना, उतना हम इन चीज़ों का ज्यादा ख्याल रखेंगे। तो लिहाजा अल्लाह की तरफ से ये कलाम है, उसी को फायदा होगा जो अल्लाह की बड़ाई को मानेगा। और आखिरी जुमले में इमाम मालिक कहते हैं वल ईमान बिही वाजिबुन, इस पर ईमान लाना वाजिब है। ये पिछले जो डिविएटेड फिरके गुजरे हैं ना, सेक्ट्स थे जो डिविएटेड या गुमराह फिरके, उनमें से एक फिरके ने अल्लाह के अर्श पर होने का इनकार किया था। उसी के तोहफे आज भी दुनिया में फैले हुए हैं, कहते हैं अल्लाह तेरे अंदर मेरे अंदर, वो कहते हैं ऊपर नहीं अल्लाह मेरे अंदर है, ये सिर्फ इस अकीदे का इनकार है। हालांकि शायद 8 से ज्यादा बार कुरान पाक में अल्लाह के अर्श पर होने का तज़किरा मौजूद है, और फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, उसी का है जो आसमानों और ज़मीन में है, वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है। इमेजिन तो करें क्या कुछ है जमीन और आसमान के बीच में। सिर्फ इतना नहीं, वमा तख्त सरा, और जो गीली मट्टी के अंदर है। सरा कहते हैं गीली मट्टी को, बीज डालने से पहले अमूमन मट्टी को गीला कर लिया जाता है ना, तो सरा कहते हैं अरबी में खाके नम नाक, गीली मट्टी, सीली मिट्टी जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है। आप जमीन खोदेंगे ना, ऊपर सूखी है, थोड़ी सी खोदते जाएंगे ना तो नीचे से पानी निकलेगा, ठीक है। अल्लाह के इंतहाई इल्म का इजहार है जमीनों और आसमानों के बीच में। तुमको कहोगे हमें भी दिखता है, चलो तुम देख लेते हो आसमानों में क्या, जमीनों में क्या, बीच में कहीं जरासीम है कहीं कुछ है, लेकिन वमा तहत सरा, तुम तो जमीन के नीचे एक खास हद तक देखते हो ना, मादनियात हैं, पानी है, खजाने हैं, अल्लाह तो उसके बहुत डीप डाउन भी जानता है, इतना बारीक बीन है। वह इन तजहर बिलकौली, और अगर तुम बुलंद आवाज से कोई बात करो अल्लाह को पुकारते हुए, या उससे दुआएं मनाजात करते हुए, या आपस में बातें करते हुए, जैसे मर्जी करो, फइन्नहु यालमु सिर्र, वो तो छुपी हुई बात को भी जानता है। सिर समझ आ गया, तजहर का ऑपोजिट, ऊंची आवाज से बोलो तो सिर, नीची से बोलो, लेकिन व अख्फा, और नहायत मख्फी बात को, ये क्या है, इसको हाईलाइट करें, बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर एक नुक्ता है। और वो क्या, देखिए कि हमारे जाहरी ख्यालात जो हम ऊंची बोल रहे हैं, सिर के जो हमारे जहन के अंदर आइडियाज हैं, ख्यालात हैं, इरादे हैं, आपको पता होगा कि इसके बाद आपने कहाँ जाना है, हमें नहीं पता, ठीक है, ये सिर है। और तजहर बिलकौल क्या है, जो आमतौर पर सबको पता होता है कि हम सब यहाँ इतनी बजे रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। अख्वा क्या है, मुफस्सरीन कहते हैं कि अख्वा से मुराद मुस्तकबिल में दिमाग में जो इरादे और ख्यालात आने हैं उसकी तरफ इशारा है। फ्यूचर प्लानिंग्स, कितने बच्चे आपके होने हैं, कहाँ किसकी शादी होनी है, कौन सा घर आगे अल्लाह ने आपको जाके दे देना है, कौन सी चीज़ अल्लाह ने आपसे ले लेनी है, वो सब जानता है। तो इतने जानने वाले से अनजान रहना महरूमी नहीं है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, लहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के सब नाम अच्छे हैं। असल में ये सारी तमहीद थी किस्से मूसा की, जो अगली आयतों में आ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि इस पूरी सूरत का थीम हजरत मूसा की अल्लाह से मुलाकात है। सूरत अल-आराफ में हम हजरत मूसा के बारे में काफ़ी पढ़ चुके, तफसीलात जहाँ दोहराई नहीं जा रही, बल्कि एक गोत्र में इसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि कैसे अल्लाह की ज़ात इन सारी चीज़ों को सामने लाकर हमारे आगे लेकर आती है। वहलता का हदीस मूसा, क्या आई तेरे पास खबर मूसा की, आ चुकी है ना हमारे पास। सूरत अल-आराफ से अब तक कितनी जगह पढ़ ली, सूरह बकरा में ही पढ़ ली थी हजरत मूसा की, तो अल्लाह अपने नबी को अब कहानी सुनाते हैं, और क्यों सुनाते हैं, हालात बड़े तंग थे, तो कहा कि देखो जब अल्लाह ने उनकी मदद की तो क्या अल्लाह ताला तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो गम ना करो, ये होगा, ये सब कुछ होके रहेगा। क्या हुआ था मूसा के साथ, इसरा नारन, जब उसने एक आग देखी, ये कब हुआ था, आप सबको जुबानी याद है, मदियन से मिस्र जाते हुए अपनी बीवी के साथ, अंधेरी रात, सर्दी का मौसम, रास्ता भी मालूम नहीं, भटक गए, इतने में दूर से आपको आग दिखी, तो खुश हो गए कि आग से एक तो जरा सर्दी की शिद्दत कम होगी, और कोई ना कोई इंसान है ना जिसने आग जलाई है, तो चलो किसी को जाकर ले लेते हैं। फ़काल अली अहली, तो अपने घर वालों से कहा, उमकुसू, यहाँ रुको, उमकुसू का लफ्ज़ जमा है और अहली ही का लफ्ज़ वाहिद है, इससे लगता है मुफसरीन को कि बीवी थी, अहली बीवी है, ठीक है, और उमकुसू से लग रहा है कि कम अज़ कम वो तीन लोग थे, वल्लाहु आलम, बात समझे, तुम सब इधर रुको, अगर होता ना लिया ही उमकुसी, तू यहाँ रहे, तो पता चलता बस शौहर और बीवी थे। और हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद आ रहे थे शादी के, तो हो सकता है कि उनके साथ फिर दो से जायद बच्चे हों, इमकुसू जमा कसी है। इन या नस्तु नारा, बस मैंने आग देखी है, देखने के लिए अरबी जुबान में क्या लफ्ज आते हैं भाई, रा, रुयत, तो यहां तो आनसा है, यही लफ्ज हम सूरत नूर में भी पढ़ेंगे, हत्ता तस्तानिसु, वहां इजाजत के लिए लफ्ज इजन की बजाय उनसा है, तो समझिएगा कि वो आग किस किस्म की आग थी कि जिसको मानूस होने के मानों में यहां लिया गया। एक मानी क्या होगा आनस्तु का, मैं मानूस हुआ हूं साग से, फेमिलियर हुआ, मुझे लग रहा है श्योरली कि ये आग ही है। और आन ऐसा का मानी पाना भी होता है, टू अचीव, टू गेट। तो दूसरा मानी क्या, मैंने आग पाई है। सवाल पैदा होता है कि ये क्यों नहीं कह दिया कि राई तू नार। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि वो आग की कैफियत ही ऐसी थी, कोई ऐसी नहीं थी कि सांप ने एक अलाउद अब्र, ऐसे आती और जाती थी जैसे वो नहीं होती लाइट आए तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये लाइट आ रही है या आग है या क्या है, और असल में वो आग तो थी भी नहीं, वो तो अल्लाह के नूर की तजल्ली थी। तो उसको देख कर मूसा अलैहिस्सलाम को ये फील हुआ कि मैंने आग देखी है। अच्छा, इसमें हम कुछ चीज़ें हम दोबारा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक वाक्य के तौर पर इसको आगे लेके चलना चाहती हूँ ताकि आप इसको एंजॉय भी करें और इससे फ़ायदा भी उठाएं। क्या कहा अपनी बीवी से, बच्चों से, बैठो तुम, इन्नी आनस्तु नारन, मैंने एक आग देखी है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा, ताकि मैं ले आऊँ तुम्हारे पास। देखिए आती कुम में भी जमा का लफ्ज़ है कुम, ये नहीं कहा कि आती की कि मैं तुम्हें, यानी सिर्फ बीवी को कहते, या एक बच्चा होता तो कहते आती कुमा, तुम दोनों के पास ले आओ, आती कुम मिन्हा से लगता है कि बच्चे और भी थे। मूसा ने इल्म के सफर में बीवी बच्चों को साथ रखा, हजरत इब्राहिम ने अपने बीवी बच्चे को अपने से दूर किया, क्या पता चला कि दीन के रास्ते तनहा नहीं तय होते, कभी छोड़ना भी पड़ता है अल्लाह के हुक्म पे, तो कभी उनको साथ लेकर भी चलना पड़ता है। क्या करूंगा मैं, आती को मिन्हा भी कबस है, मैं इसमें से एक अंगारा ले आऊं। कबस लफ्ज जो है ना, ज्यादा आग में से थोड़ी सी आग लेना, अंगारा, फ्लेम, शोला, चिंगारी भी कह सकते हैं। उर्दू में अपने एक लफ्ज सुना है इकतबास, ये वही है, अपनी तहरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी की तहरीर कोट करना, इसको इकतबास कहते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि वो कहते हैं मैं आपको एक एक बताता हूँ, यानी मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, जैसे बीच में आपको शेर सुनाए जाते हैं कभी कभी गलत मलत, तो वो भी एक किस्म का इकतबास होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि किसी की चीज़ लेकर आपने अपनी गुफ्तगू को चमका लिया, ठीक है। तो यही मतलब है कि पूरी इबारत में से कुछ लेना, मैं इसमें से ले आऊं, औ अजीदु अलन नारी हुदा, या मैं पाऊं, अजीदु क्या है लफ्ज, क्या रूट होगा अजीदु का, वजदा से, वजूद, वाजिद, अलवाजिद अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है, मेरा वजूद आपका वजूद, वो गुम गई, अजीदा के साथ आ गया कि मैं पाऊं, या फिर दूसरी वजह क्या है कि मैं जाऊं, अलन नारी हुदा, आग के पास से कोई रहनुमाई। ये कैसे रहनुमाई मिलनी थी, आग उनको गाइड करती, नो, आग है तो कोई आग जलाने वाला भी है, तो मैं उससे जरा रास्ता पूछ के आता हूँ कि मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं। तो गोया के खुदान बामानी हादी, कोई रहनुमाई करने वाला। पीछे सूरह मरियम आयत 52 में हम क्या पढ़ चुके, वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनी वक़र्रबनाहु नजिया, बस आप कह लें कि यूसी की तफसीर है कि मैं ढूंढूं, और अला देखिए यहाँ ऊपर के मानी में नहीं है, वरना ऊपर से मुराद है कि आगे ऊपर ही जाके चला जाऊं, बल्कि करीब के मानों में। खैर, कहा कि मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ क्या हालात है, बच्चों को बीवी को छोड़ा, खुद चल पड़े। सब क्यों नहीं गए साथ, हर जगह नहीं जा सकते, जो मुकाम यहाँ मूसा को मिलने वाला था वो बच्ची बीवी को तो नहीं मिलना। यहाँ एक बात भूल गई थी शुरू में, वही नोट कर लीजिएगा कि सूरत तौहा का एक नाम सूरत कलीम भी है, क्योंकि इसमें अल्लाह के साथ मूसा के कलाम की तफसीलात हैं। है कुछ जगह पे फिर कुछ लोगों को बिठाना पड़ता है कि आप तशरीफ रखें, आपको बाद में बताते हैं क्या हुआ। फिर क्या हुआ, आग के पास आगे, फलम माता हनू दिया या मूसा, फिर जब वो आए उस आग के पास तो निदा दी गई, इन्नी अना रब्बुक, ये तो मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, यानी जिसे तुम आग समझ कर यहाँ आए हो वो तो मैं खुद हूँ, तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। क्या दिल की हालत होगी मूसा के, फ़खल नालेक, अपने जूते उतार दो। नाल कहते हैं जूते को, नालेन, दो जूते, तो यहाँ नालेक, अपने जूते उतार दो, क्योंकि इन्न कभी वादिल मुकद्दस तुवा, बेशक तुम तुवा की मुकद्दस वादी में हो। गोया के मूसा ने जूते पहने हुए थे तो कहा कि उतार दो, क्यों, ताजीम के तौर पर भी उतार दो, हो सकता है उन जूतों में कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मूसा के अल्लाह ताला के साथ कलाम के अंदर रुकावट बने। बाज़ इंसान के जिस्म पे कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको फोकस ही नहीं होने देती, उन्हीं को देख के खुश हो रहे होते हैं, या हो सकता है कि खरीदा किसी ऐसी पैसे से हो कि जिसमें हलाल के साथ कुछ और आमेजिश थी, तो यहाँ पता चलता है कि गौर व फिक्र से सुनने के लिए बाज दफा इंसान को अपने आप को हल्का करना पड़ता है। और वैसे भी आपको होता है कि जूते पहनना हमारे मशरकी कल्चर में भी किसी के सामने जाने और खास तौर पे घरों में जाने से पहले जूते बाहर होते हैं। यानी ये मारूफ है कि चलते हुए देखो जिस घर के बाहर जूते हैं समझ लो ये मुसलमानों का घर है। और इख्तराम और तकद्दुस का भी ये तकाजा है कि इंसान जूते उतार के बैठे, उससे नरमी आती है, उससे सहूलत होती है। हाँ अल्लाह के नबी सल्लम से साबित है कि जरूरत के वक्त में मजबूरी के वक्त में नमाज भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन यहाँ मूसा को क्यों कहा गया इस पे मुफस्सरीन ने बहुत सारी बातें की हैं। कोई कहता है कि मूसा के जूतों में चमड़ा जो लगा हुआ था वो किसी ऐसे जानवर का था जो हलाल नहीं है, वो कुछ भी था, लेकिन इनकी सुन्नत में यहूद ने जूता पहनकर नमाज पढ़ना उसको अपने पर हराम कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लम जब मदीना में आए आपको ये बात पता थी, तो आपने फरमाया कि खालिफुल यहूद, यहूद की मुखालफत करो, लिहाजा जूता पहन के नमाज तुम पढ़ सकते हो। और अल्लाह के नबी को साहबा कहते हैं हमने आपको जूता पहन के भी पढ़ते देखा, जूते के बगैर भी देखा, तो क्या मतलब है? आज हम भी मस्जिद के खूबसूरत कारपेट पे जूते लेके बैठे? ऐसा नहीं है। आज अगर मस्जिद वाले कहते हैं जूते बाहर उतार दे, आप कहते हैं हमने तो पढ़ा जूता पहन सकते हैं, वो कहाँ पढ़ सकते हैं जब बाहर पढ़ रहे थे खुली मस्जिद, और मस्जिद नबी इतनी गर्म हो जाती थी गर्मियों में कि जूते के बगैर वहां खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता था। और उनके जूते हमारी तरह इतने पोश जूते नहीं थे, वो भी उसी के बने होते थे, खजूर के पत्तों को जोड़ के कुरकंची जूतियां बनी होंगी या कुछ ऐसा था। बाज दफा बारिश की वजह से कीचड़ होता था तो फिर सहाबा जूते पहन के भी पढ़ लेते थे। तो अमल की बात है कि आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं बाहर खेलने गए, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी है, जॉगर्स पहने हैं, उतारने मुश्किल है, चोरी होने का डर है, वो घर से वजू करके पहन के गए हैं तो उन जूतों में बाहर नमाज कम अज कम पढ़ेंगे अगर मस्जिद पास नहीं है, और मस्जिद में जाएंगे तो उतार देंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ एक इशारा मिल गया अदब का। और एक और बात याद रखिए कि जमीन पे पाँव खुला लगे इसका एक अपना असर होता है। नंगे पाँव खुली जमीन पे चलना बंदे को अल्लाह के करीब करता है। आजमा के देख लें, कभी किसी लॉन में चले जाएं और जूते हटाकर घास पे चले, आपको अल्लाह की कुदरत का प्यार आएगा। और मैं जब घास को देखती हूँ इतना नरम, और आप देखिए इतने वजन वाले लोग इंसान चीजें उसके ऊपर से गुजरती हैं, वो गुजरती हैं वो फिर सीधा। कभी आपने सारी घास मुड़ी भी तुड़ी भी देखी है? ऐसा होता है मोमिन, है नरम पर ताकत इतनी है कि हो रस में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन, दबता नहीं है। बड़े बड़े एक बार दफा पौधे गिर जाते हैं लेकिन घास अपनी जगह पे मौजूद होता है। तो यहां से क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने मूसा को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उतार दी, कहा ठीक है। मुकद्दस से तुवा क्या है? तुवा नाम की वादी जहां को है तूर है। वनख्तरतुक, और मैंने तुमको चुन लिया, इख्तियार करना, खैयरा से खायरा, मूसा को अल्लाह ने चुना, रशकार है तो क्या आपको नहीं चुना? कल मूसा से अल्लाह ने कलाम किया तो क्या आज अल्लाह आपसे कलाम नहीं करता? हम तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना थोड़ा है। अल्लाह की जात ने हमारे लिए वो मुकाम यहाँ रख दिया कि जो उसने अपने नबियों को दिया था, तो किसी को कुरान सुनने की तौफीक मिल जाए ये अल्लाह का उसके लिए चुनाव है। बुखारी की रिवायत है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह भलाई का इरादा जिसके साथ कर ले उसको अपने दीन की समझ दे देता है। फिर यहां वादिल मुकद्दस क्यों कहा हालांकि सारी जमीन पाक है? तो वजह यह है कि वो जगह वादी मुकद्दस इसलिए हुई कि वहां कोई बहुत ही मुकद्दस काम होने वाला था। याद रखिए कोई चीज कुदसिया या कुद्दूस या पाक मुकद्दस कब होती है? जब वहां मुकद्दस काम हो। ये जमीन के टुकड़ों का भी नसीब है। जैसे आप देखिए बैतुल मकदस, खाना काबा, मस्जिद, कुरान जहां रखा जाता है, नमाज की जगह, ये सब मुकद्दस होती हैं। पूछिए जरा मेरा घर मुकद्दस है? घर का वो हिस्सा जहां आप इबादत करते हैं, अच्छे काम करते हैं, इंशाल्लाह वो मुकद्दस है। और अगर नाफरमानी है कहीं तो उसको भी पाक करने की जरूरत है। फिर इसी तरह आप अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपको चुन लिया। अच्छा चुन लिया तो अब क्या करो? घर जाके सो जाओ कि चुने गए जी, अब और क्या करना है? कहा नहीं, फस्त मीली मायूहा, तो अब जरा गौर से तवज्जो से सुनो जो तुम पर वही की जा रही है। एक लफ्ज था समिया, सुनो, लिसन, यहां समिया नहीं है, इस्तमिया, बाब इस्तिफाल, और इसकी खसूसियात में तवज्जो और ज्यादा डीप टोन मानी होते हैं। गौर से सुनना कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आप देखिए कि इस तमिया में ये भी होता है कि जब दोनों बोलते हैं, यानी कॉन्वर्सेशन के मानों में, कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, गौर से सुनो, दिल के कान भी खोल दो और जिस्म के कान भी खोल दो, और कहा क्या, इन्नी अनल्लाह, ये है वो वही जो मूसा पे पहली आई। अगर आप इस वक्त मेरे जहन के साथ चल रहे हैं, नबी सल्लम के ऊपर पहली वही क्या आई, इकरा बिस्मि रब्बिका। हजरत ईसा के ऊपर पहली वही क्या थी, इन्नी अब्दुल्लाह, पिछली सूरत में पढ़े, ये मूसा की पहली वही है, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, कोई और माबूद नहीं मेरे सिवा। आज यहूदियत का ज़रा अकीदा देखिए और इसको देखिए, क़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, और उन पे जो पहली वही नबी पे उतरी है वो क्या है, इन्नी अनल्लाह। आज क्रिश्चियंस के ज़रा अकायद को भी देखे और ईसा का पहला कलाम देखे कि इन्नी अब्दुल्लाह, समझ आया कि इन मज़ाहब ने अपने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया, कुछ भी इन्होंने उसमें से बाकी नहीं रखा कि जो कि इनको रखने की ज़रूरत थी। यहाँ बात है काबिले गौर अना की, लफ्ज़ अना को हाईलाइट कीजिएगा, इन्नी अना। पहले तो आप देखिए कि खुद अल्लाह ने बोला, बाद लोग कहते हैं नहीं वो दरख्त के अंदर से आवाज़ आई थी, दरख्त बोला, नऊज़ु बिल्लाह, ये वो फिर हलूल का अकीदा आ जाता है, दरख्त कैसे कह सकता है कि अनल्लाह, अल्लाह खुद बोले थे, जैसे इस वक्त कुरान पढ़ते हुए मैं और आप अल्लाह ही के अल्फाज़ सुन रहे हैं। मैं इसको जब सुबह पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मैंने कहा अल्लाह ताला, मूसा अकेले थे उस वक़्त और एकदम आवाज़ आती है इन्नी अनल्लाह। देखिए ना कि नबी सल्लम के पास जिब्राइल आए थे तो क्या हालत हो गई थी आपकी, ज़म्मेलूनी ज़म्मेलूनी, इतनी खशियत होती है फरिश्ते की, मूसा के दिल का क्या हाल होगा कि बराह रास्त अल्लाह कलाम करते हैं और पहले खबर भी नहीं। रात का वक्त इन्नी अनल्लाह, लफ्ज़ अना को देखिए, बहुत मुमताज़ और मुनफरिद आयत है ये। दुनिया में हम अपने लिए लफ्ज़ बोलते हैं अना, ईगो, असल में अना का लफ्ज़ यहाँ जो ना, ये वो ईगो ही है, ये है अनाए कुबरा। अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुझे अना का हक है, और जो लफ्ज़ जहाँ है पूरे कुरान में कहीं और इस तरह नहीं दिखते। यही वो लफ्ज़ है जिसको अलामा इकबाल ने अनाए सगीर के लिए इंसान के लिए इस्तेमाल किया, कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही कहते हैं वो ज़्यादा। तो अल्लाह की है अनाए कबीर, इंसान की है अनाए सगीर, खूबसूरत कॉम्बिनेशन क्या है कि अनाए सगीर अनाए कबीर के आगे झुक जाए, ये है या कना बुदो या कनस्ताई, बस ये है अपनी हस्ती कि अल्लाह मैं छोटी तू बड़ा, बस मैं तेरे आगे झुकी, ये है पूरे दीन का खुलासा। फाबुदनी, बस मेरी इबादत करो, जो मैं कहता हूँ वो करो। देखिए तरतीब को नोट कीजिएगा ज़रा, फस्तमी पहला हुक्म मूसा को, दूसरा क्या फाबुदनी, दोनों के बीच में एरो लगा लीजिए, तरतीब इबादत करो, फिर तीसरा व अकीम सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। यही तरतीब हमें भी मलहूज रखनी चाहिए लोगों को बात करने के लिए। गौर से सुनो, ये नहीं कि बीच में बोलो, जब बंदा बीच में बोलने लग जाता है ना तो सुनता नहीं है, फिर उसके बाद थोड़ी सी जो बात हो रही थी वो पहले तो अपने आप को नॉर्मल करने में गुजर चुकी होती है उस माहौल से जो आपके बोलने से दूसरों पे भी आता है। तो बेहतरीन तरीका के पहले पूरी बात गौर से सुनो, बेस्ट कम्युनिकेशन, फिर फाबुदनी इबादत करो। आप में से कोई पूछ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करें, और फाबुदनी में इबादत या कना बुदो, इतात बंदगी गुलामी परस्तिश सब कुछ पूरा करो, फिर उसके बाद अकीम सलाम, और दरख्त की मिसाल याद कर लें तो इबादत पहले रूट्स पक्की करो और फिर अकीम सलाम स्टैम्प तना बनो। तीसरी बात इसमें देखिए, लिज़िक्री मेरी याद के लिए, यानी नमाज वो जिसमें अल्लाह की याद आए। इसी तरह बास कहते हैं नमाज पढ़ो, कभी भूल जाए तो याद आते ही पढ़ लो। फिर एक और मानी लेते हैं कि कभी मेरी याद आए तो तसल्ली के लिए नमाज पढ़ लो, क्योंकि जब किसी से मोहब्बत होती है ना, फिर एकदम हमें वो याद आता है, तो हम फौरन फोन कर लेते हैं कि लो भाई को फोन कर लेते हैं, फिर तसल्ली हो जाती है ना बात करके। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब मेरी याद तुम्हें सताने लगे, मिस करो मुझे तुम, तो फौरन नमाज के लिए चले जाओ। इस तरह एक चौथा मानी भी है इसका कि जब दिल पर गफलत छा रही हो तो मेरे सामने नमाज के लिए खड़े हो जाओ। और अल्लाह के नबी की सुन्नत दिखती है कि भाग भाग के जाए नमाज पे जाते थे। इजा हसब अल अमरु, जब कोई मामला मुश्किल हो जाता तो अल्लाह के नबी जाए नमाज पे चले जाते। खुशी शुक्राने के नफिल, फैसला करना है कोई इस्तखारा, कोई तकलीफ है तो इस्तरार और बेकरारी, तो बंदा है मोमिन को चैन पड़ जाता है नमाज पढ़ के। अल्लाह में पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अब सिर्फ फराइज नहीं, नवाफिल भी हम सब के लिए। हाँ, इन नसात आत या तो, ये अब चौथी बात कही अल्लाह ने, क्यामत आने वाली है याद रखो। अकाद उखफी, हाँ करीब है कि मैं इसको छुपा दूँ। मैं ना बताऊँ, ये जो अकादु का लफ्ज़ है ना, इसकी भी मुख्तलिफ तफसीरें हैं। बाज़ कहते हैं उरीदु का मानी है मैं इरादा करता हूँ, यानी मैं इसको इरादा करता हूँ कि इसको छुपा लूँ। दूसरा मानी क्या है अकादु का, कि करीब था कि किसी से छुपा लेता, सबसे छुपा लेता और कुछ ना बताता तो क्यामत करीब है, करीब आ जाती फौरन, यानी क्यामत का तस्करा भी ना होता कुरान सुन्नत में, और अचानक क्यामत आ जाती तो कैसा लगता, तुम्हें तो होश ही नहीं थी क्यामत आ गया, पता है तो तैयारी नहीं हो रही, पता ही ना हो टेस्ट होने और टेस्ट आ जाए तो क्या करेंगे, ये मतलब है। पता ही ना हो यहाँ स्पीड लिमिट 80 है और आप 90 पे थे तो टिकट मिल गया, तो ये मुराद है कि मैंने सोचा था कि इसको छुपा लूं, इसको ना ही तुमको बताऊं, लेकिन अब यहां ये बताता हूं कि आनी क्यों है। ली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसअ, ताकि हर जान को बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। सूरह तूरा 16 में आता है इन्नमा तुजज़ौ नमा कुंतुम तअमलून, तो क्यामत के दिन कोई नया काम नहीं होगा, क्यामत के दिन सिर्फ हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे जो आज दुनिया में हमारे पर्चों के साथ बन रहे हैं। कहा कि मैंने कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं रखा क्यामत का कि अचानक आ जाए, और वक्त छुपा लिया हाँ ताकि हर वक्त तैयार रहो। फला यसुद्दन कन्हा, और देखना कहीं तुम्हें इससे रूगरदा ना कर दे, यानी क्यामत से, नमाज से, इबादत से, ये सारी चारों बातों से कोई शख्स तेरा रुख ना पलट दे। कौन? मल्ला युमिनु बिहा, जो इस पर ईमान ही नहीं लाता, यानी अपने ईमान की फिक्र करो, कोई बेईमान शख्स तुम्हें इससे दूर ना कर दे। वत्तवा हवा हो, और वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। पिछली सूरत में भी ये लफ्ज़ है ना कि हमेशा याद रखिए, दीन सीखते हुए बंदे को जिस कंपनी से दूर रहना है ना, जिनसे आप वाकई आप किनारा कर ही लें, वो लोग हैं जो आपको इस कुरान से दूर करने का मशवरा देते हैं। एक अपने लिए क्राइटेरियन रख लें, कौन मुझे कुरान पढ़ने का मशवरा देता है समझ के, वैसे तो हम सारे पढ़ते हैं टूटा फूटा, इस वक्त जो बात हो रही है सीखने की, कौन मुझे कुरान सीखने का और उसको कंटिन्यू रखने का मशवरा देता है हर हालात में, और कौन है जो कहता है कि यसुद्दन्ना, बस रुक जाओ ना, बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया तुमने। पहला आपका दोस्त है, दूसरा आपका दुश्मन है, चाहे वो आपके घर वाला है या कोई बाहर वाला है। और वजह अमूमन होती है वत्तबा हवा हो, ख्वाहिशात अवेलेबल ही नहीं है, तुम फोन करें तो मिलती नहीं हो, बुलाएं तो आती नहीं हो, टेस्ट है, ये है, वो है, बस छोड़ दो का। अगर तुमने इनकी बात मान ली तो फतरदा, फिर ऐसा ना हो कि तुम हलाक हो जाओ। ये लफ्ज तरदा पता क्या है? रद्दी की टोकरी, रद्द कर दिए जाओ, रिजेक्टेड, ट्रैश कैन बन जाओगे। जब बंदा दीन की ये दावत को छोड़ता है वो अल्लाह ही ट्रैश बन जाता है, अवेलेबल टू ऑल, शारे आम बन जाता है इंसान। आज आप देखिए कि जिन बातों का मूसा को हुक्म था, आज उनकी कौम का क्या हाल है। आज यहूदियत में नमाज नाम की कोई चीज ही नहीं है, पहला हुक्म मूसा को नमाज का मिल रहा है। आज हम मुसलमानों की नस्लों की नस्लें नमाज से दूर हैं, और अल्लाह के नबी नमाज के पीछे भागते थे। सहाबा किराम तर्क सलात के सिवा किसी काम को कुफर नहीं समझते थे, यानी जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता था उसके बारे में सहाबा का यकीन था कि ये इस्लाम से निकल गया, आज हम क्या करते हैं, बहुत नेक हैं बस नमाज नहीं पढ़ते। कोई मुसलमान नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ते। अब इसको आप और सख्त लफ्ज़ों में जिस तरह मर्जी कह लें अपने आप को। तो बहरहाल आप देखिए कि अल्लाह की ज़ात किस तरह बंदे के साथ इन मामलात को लेके आती है।
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى